श्री परमात्म ने नमः। गीता का सार अध्याय 9 श्लोक 16 से 18, भगवान ही सब कुछ है। नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि हमारे हर कर्म, हर भक्ति, हर यज्ञ में समाहित हैं? आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के श्लोक 16 से 18 को समझेंगे, जहां श्री कृष्ण कहते हैं कि वे स्वयं यज्ञ, मंत्र, हवन, स्वाहा, औषधि और फल हैं। तो क्या हमारी पूजा और कर्मों का सीधा संबंध भगवान से है? आइए इसे गहराई से समझें। सबसे पहले एक सवाल आप सबके लिए, क्या आपने कभी किसी कठिन समय में गीता का कोई श्लोक पढ़कर समाधान पाया है? कमेंट में बताइए। पिछले श्लोक अध्याय 9 श्लोक 15 में हमने जाना कि भगवान की भक्ति के विभिन्न रूप होते हैं और लोग अपने अपने तरीके से भगवान को पाने की कोशिश करते हैं। आज हम इसे और विस्तार से समझेंगे कि क्यों श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ही हर यज्ञ, पूजा और मंत्र का मूल है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही हवन हूँ, मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही फल देने वाला हूँ। इसका अर्थ क्या है? भगवान केवल पूजा का केंद्र नहीं, बल्कि हर उस प्रक्रिया का हिस्सा है जिससे हम उन्हें याद करते हैं। जो भी कर्म श्रद्धा और प्रेम से किया जाता है, वही सच्ची भक्ति है। इसलिए अगर हम अपने दैनिक कार्यों को भी ईश्वर के प्रति समर्पित कर दें, तो वही सच्ची साधना बन जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई विशेष कर्म करते समय आपको भगवान की उपस्थिति महसूस हुई हो? कमेंट में हमें बताइए। आज की सीख, कर्म करो परंतु फल की चिंता मत करो। हर कार्य को भक्ति बना दो और देखो कैसे जीवन बदलता है। गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीने की कला है। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजक शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभि ध्यान गम्यं वंदे विष्णो भव भैहरं सर्व लोकैक नाथम्। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पदक्रमोपनिष्ते गायन्ति यम सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति या योगिनो यस्यांतर न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चानूर मर्दनम् देव की परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्।
भगवान का अपने गुण, प्रभाव और विभूतिसित स्वरूप का वर्णन करते हुए कारण रूप समस्त जगत को भी अपना स्वरूप बतलाना। श्लोक 16। अह क्रतुरः यज्ञः स्वधाः ममोष्टम् मंत्रोः महमेवाज्यम् अहमग्निरहनहुतम्। उच्चारण की विधि अहम् क्रतुः अहम् यज्ञः स्वधाः अहम् अहम् औषधम् मंत्रः अहम् अहम् एव आज्यम् अहम् अग्न्यः अहम् हुतम्। 16। शब्दार्थ क्रतुः अर्थात क्रतु, अहम् अर्थात मैं हूँ, यज्ञः अर्थात यज्ञ, अहम् अर्थात मैं हूँ, स्वधा अर्थात स्वधा, अहम् अर्थात मैं हूँ, औषधम् अर्थात औषधि, अहम् अर्थात मैं हूँ, मंत्र अर्थात मंत्र, अहम् अर्थात मैं हूँ, आज्यम् अर्थात घृत, अहम् अर्थात मैं हूँ, अग्न्यः अर्थात अग्नि, अहम् अर्थात मैं हूँ, और हुतम् अर्थात हवन रूप क्रिया भी अहम् अर्थात मैं, एव अर्थात ही हूँ। अर्थ क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, गृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। 16। व्याख्या। 7वें अध्याय से 12वें अध्याय के इस मध्यम षटक में भगवान ने अपनी भक्ति का, उपासना का वर्णन किया है और उसमें अस्मत् अर्थात अहम्, मम, मया, मत आदि शब्दों का प्रयोग किया है। यहाँ 16वें श्लोक में तो अस्मत् अर्थात अहम् शब्द का प्रयोग 8 बार किया गया है। अहम् शब्द का इतना अधिक प्रयोग इस षटक के दूसरे किसी भी श्लोक में नहीं किया गया है। अपनी रुचि श्रद्धा विश्वास के अनुसार किसी को भी साक्षात परमात्मा का स्वरूप मानकर उसके साथ संबंध जोड़ा जाए तो वास्तव में यह संबंध सत के साथ ही है। केवल अपने मन बुद्धि में किंचन मात्र भी संदेह न हो। जैसे ज्ञान के द्वारा मनुष्य सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में एक परमात्म तत्व को ही जानता है, परमात्मा के सिवाय दूसरी किसी वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति क्रिया आदि की किंचन मात्र भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इसमें उसको किंचन मात्र भी संदेह नहीं होता। ऐसे ही भगवान विरारूप से अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं, आता सब कुछ भगवान ही भगवान है, इसमें अपने को किंचन मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए। कारण कि यह सब भगवान कैसे हो सकते हैं, यह संदेह साधक को वास्तविक तत्व से मुक्ति से वंचित कर देता है और महान आफत में फंसा देता है। अतः यह बात दृढ़ता से मान लें कि कार्य कारण रूप से स्थूल सूक्ष्म रूप जो कुछ देखने सुनने समझने और मानने में आता है वह सब केवल भगवान ही है। इसी कार्य कारण रूप से भगवान की सर्वव्यापकता का वर्णन 16वें से 19वें श्लोक तक किया गया है। अह क्रतुर यज्ञ स्वधा ममोष्टम, जो वैदिक रीति से किया जाए वह क्रतु होता है, वह क्रतु मैं ही हूं। जो स्मार्त पौराणिक रीति से किया जाए वह यज्ञ होता है, जिसको पंचमहायज्ञ आदि स्मार्त कर्म कहते हैं, वह यज्ञ मैं हूं। पितरों के लिए जो अन्न अर्पण किया जाता है उसको स्वधा कहते हैं, वह स्वधा मैं ही हूं। उन क्रतु यज्ञ और स्वधा के लिए आवश्यक जो शाकल्य है अर्थात वनस्पतियां हैं बूटियां हैं तिल जौ छुहारा आदि औषध है, वह औषध भी मैं ही हूं। मंत्रो महमेवाज्य महमग्निर्हनहुतम, जिस मंत्र से क्रतु यज्ञ और स्वधा किए जाते हैं वह मंत्र भी मैं ही हूं। यज्ञ आदि के लिए गोघृत आवश्यक होता है, वह घृत भी मैं ही हूं। जिस आहवनीय अग्नि में होम किया जाता है वह अग्नि भी मैं ही हूं और हवन करने की क्रिया भी मैं ही हूं। अतः यह बात दृढ़ता से मान ले कि कार्य कारण रूप से स्थूल सूक्ष्म रूप जो कुछ देखने सुनने समझने और मानने में आता है वह सब केवल भगवान ही है। इसी कार्य कारण रूप से भगवान की सर्वव्यापकता का वर्णन 16वें से 19वें श्लोक तक किया गया है। अह क्रतुर यज्ञ स्वधा ममोष्टम, जो वैदिक रीति से किया जाए वह क्रतु होता है, वह क्रतु मैं ही हूं। जो स्मार्त पौराणिक रीति से किया जाए वह यज्ञ होता है, जिसको पंचमहायज्ञ आदि स्मार्त कर्म कहते हैं, वह यज्ञ मैं हूं। पितरों के लिए जो अन्न अर्पण किया जाता है उसको स्वधा कहते हैं, वह स्वधा मैं ही हूं। उन क्रतु यज्ञ और स्वधा के लिए आवश्यक जो शाकल्य है अर्थात वनस्पतियां हैं बूटियां हैं तिल जौ छुहारा आदि औषध है, वह औषध भी मैं ही हूं। मंत्रो महमेवाज्य महमग्निर्हनहुतम, जिस मंत्र से क्रतु यज्ञ और स्वधा किए जाते हैं वह मंत्र भी मैं ही हूं। यज्ञ आदि के लिए गोघृत आवश्यक होता है, वह घृत भी मैं ही हूं। जिस आहवनीय अग्नि में होम किया जाता है वह अग्नि भी मैं ही हूं और हवन करने की क्रिया भी मैं ही हूं। वेद्यम पवित्रमोंकार ऋक्साम यजुरेव च, वेदों की बताई हुई जो विधि है उसको ठीक तरह से जानना वेद्य है। तात्पर्य है कि कामना पूर्ति के लिए अथवा कामना निवृत्ति के लिए वैदिक और शास्त्रीय जो कुछ क्रतु यज्ञ आदि का अनुष्ठान किया जाता है वह विधि विधान सहित सांगोपांग होना चाहिए। अतः विधि विधान को जानने योग्य सब बातें वेद्य कहलाती हैं। वह वेद्य मेरा स्वरूप है। यज्ञ दान और तपय तीनों निष्काम पुरुषों को महान पवित्र करने वाले हैं। यज्ञोदान तपश्चैव भावनानि मनीषिणाम 18:5। इनमें निष्काम भाव से जो हव्य आदि वस्तुएं खर्च होती हैं वे भी पवित्र हो जाती हैं, और इनमें निष्काम भाव से जो क्रिया की जाती है वह भी पवित्र हो जाती है। यह पवित्रता मेरा स्वरूप है। क्रतु यज्ञ आदि का अनुष्ठान करने के लिए जिन ऋचाओं का उच्चारण किया है उन सब में सबसे पहले का ही उच्चारण किया जाता है। इसका उच्चारण करने से ही ऋचाएं अभीष्ट फल देती हैं। वेदवादियों की यज्ञ दान तप आदि सभी क्रियाएं का उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। गीता 17वें अध्याय का 24वां श्लोक। वैदिकों के लिए प्रणव का उच्चारण मुख्य है, इसलिए भगवान ने प्रणव को अपना स्वरूप बताया है। उन क्रतु यज्ञ आदि की विधि बताने वाले ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद ये तीनों वेद हैं, जिसमें नियताक्षर वाले मंत्रों की ऋचाएं होती हैं। उन ऋचाओं के समुदाय को ऋग्वेद कहते हैं, जिसमें स्वरों सहित गाने में आने वाले मंत्र होते हैं। वे सब मंत्र सामवेद कहलाते हैं। जिसमें अनियताक्षर वाले मंत्र होते हैं, वे मंत्र यजुर्वेद कहलाते हैं। एक जिन मंत्रों में अस्त्र शस्त्र भवन आदि का निर्माण करने वाली लौकिक विद्याओं का वर्णन है, वे सब मंत्र अथर्ववेद कहलाते हैं। यद्यपि अनुसमुच्चयार्थ च अव्यय से अथर्ववेद का ग्रहण किया जा सकता है, तथापि उसमें लौकिक विद्याओं का वर्णन होने से क्रतु यज्ञ आदि के अनुष्ठान में उसका नाम नहीं लिया गया है। इसी कारण से आगे 20-21वें श्लोकों में आए त्रैविद्या और त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना पदों में भी ऋक, साम, यजुह इन तीनों का ही संकेत किया गया है। ये तीनों वेद भगवान के ही स्वरूप हैं। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, इस जड़ चेतन स्थावर जंगम आदि संपूर्ण संसार को मैं ही उत्पन्न करता हूं, अह कृत्स्नस्य जगतः प्रभव, गीता 7:6, और बार बार अवतार लेकर मैं ही इसकी रक्षा करता हूं, इसलिए मैं पिता हूं। 11वें अध्याय के 43वें श्लोक में अर्जुन ने भी कहा है कि आप ही इस चराचर जगत के पिता हैं, पितासि लोकस्य चराचरस्य। इस संसार को सब तरह से मैं ही धारण करता हूं और संसार मात्र का जो कुछ विधान बनता है उस विधान को बनाने वाला भी मैं हूं, इसलिए मैं धाता हूं। जीवों की अपने अपने कर्मों के अनुसार जिस जिस योनि में जैसे जैसे शरीरों की आवश्यकता पड़ती है उस योनि में वैसे वैसे शरीरों को पैदा करने वाली माता मैं हूं, अर्थात मैं संपूर्ण जगत की माता हूं। प्रसिद्धि में ब्रह्माजी संपूर्ण सृष्टि को पैदा करने वाले हैं, इस दृष्टि से ब्रह्माजी प्रजा के पिता हैं। वे ब्रह्माजी भी मेरे से प्रकट होते हैं, इस दृष्टि से मैं ब्रह्माजी का पिता और प्रजा का पितामह हूं। अर्जुन ने भी भगवान को ब्रह्मा के आदिकर्ता कहा है, ब्रह्मणोप्याधिकर्त्रे 11:37। श्लोक 18। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थान निधानं बीजं व्ययम्। उच्चारण की विधि गतियः भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजं अव्ययम्। 18 शब्दार्थ गतियः अर्थात प्राप्त होने योग्य परमधाम, भर्ता अर्थात भरण पोषण करने वाला, प्रभुः अर्थात सबका स्वामी, साक्षी अर्थात शुभाशुभ का देखने वाला, निवासा अर्थात सबका वासस्थान, शरणम अर्थात शरण लेने योग्य, सुहृत अर्थात प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, प्रभव प्रलय अर्थात सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थानम अर्थात स्थिति का आधार, निधानम अर्थात निधान, और अव्ययम अर्थात अविनाशी, बीजम अर्थात कारण भी। अहम अर्थात मैं, एव अर्थात ही हूं, अर्थ प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूं। 18 गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्राणियों के लिए जो सर्वोपरि प्रापणीय तत्व है वह गति स्वरूप मैं ही हूं। संसार मात्र का भरण पोषण करने वाला भर्ता और संसार का मालिक प्रभु मैं ही हूं। सब समय में सबको ठीक तरह से जानने वाला साक्षी मैं हूं। मेरे ही अंश होने से सभी जीव स्वरूप से नित्य निरंतर मेरे में ही रहते हैं, इसलिए उन सब का निवास स्थान मैं ही हूं। जिसका आश्रय लिया जाता है वह शरण अर्थात शरणागत वत्सल मैं ही हूं। बिना कारण प्राणी मात्र का हित करने वाला सुहृद अर्थात हितैषी भी मैं हूं। प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजं व्ययम्। संपूर्ण संसार मेरे से ही उत्पन्न होता है और मेरे में ही लीन होता है, इसलिए मैं प्रभव और प्रलय हूँ अर्थात मैं ही संसार का निमित्त कारण और उपादान कारण हूँ। गीता 7वें अध्याय का 6वां श्लोक। महाप्रलय होने पर प्रकृति सहित सारा संसार मेरे में ही रहता है, इसलिए मैं संसार का स्थान हूँ। 2 महासर्ग अवस्था में संपूर्ण प्राणी जिसमें रहते हैं वह निवास है, और महाप्रलयावस्था में प्रकृति सहित सारा संसार जिसमें रहता है वह स्थान है। यही निवास और स्थान में अंतर है। संसार की चाहे सर्गावस्था हो चाहे प्रलयावस्था हो, इन सब अवस्थाओं में प्रकृति, संसार, जीव तथा जो कुछ देखने सुनने समझने में आता है वह सबका सब मेरे में ही रहता है, इसलिए मैं निधान हूं। सांसारिक बीज तो वृक्ष से पैदा होता है और वृक्ष को पैदा करके नष्ट हो जाता है, परंतु ये दोनों ही दोष मेरे में नहीं है। मैं अनादि हूं अर्थात पैदा होने वाला नहीं हूं, और अनंत सृष्टियां पैदा करके भी जैसा का तैसा ही रहता हूं, इसलिए मैं अव्यय बीज हूं। परिशिष्ट भाव जैसे ज्ञान की दृष्टि से गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, गुणा गुणेशु वर्तन्ते, गीता 3:28, ऐसे ही भक्ति की दृष्टि से भगवान की वस्तु ही भगवान के अर्पित हो रही है। जैसे कोई गंगाजल से गंगा का पूजन करे, दीपक से सूर्य का पूजन करे, पुष्पों से पृथ्वी का पूजन करे, ऐसे ही भगवान की वस्तु से भगवान का ही पूजन हो रहा है। वास्तव में देखा जाए तो पूज्य भी भगवान है, पूजा की सामग्री भी भगवान है, पूजा भी भगवान है तथा पूजक भी भगवान है। लौकिक बीज तो खेती से पैदा होने वाला होता है, पर भगवान रूपी अलौकिक बीज पैदा होने वाला नहीं है, इसलिए भगवान ने 7वें अध्याय में अपने को सनातन बीज बताया, बीजमा सर्वभूताना विद्धि पार्थ सनातन 7:10। अब यहां भगवान अपने को अव्यय बीज बताते हैं, बीजम व्ययम, कारण कि लौकिक बीज तो अंकुर पैदा करके नष्ट हो जाता है, पर भगवान रूपी अलौकिक बीज अनंत ब्रह्मांड पैदा करके भी ज्योंकात्यों रहता है, उसमें किंचिन मात्र भी विकार नहीं होता। तात्पर्य है कि भगवान संपूर्ण जगत के आदि में भी रहते हैं और अंत में भी रहते हैं। जो आदि और अंत में रहता है वही मध्य वर्तमान में भी रहता है, यह सिद्धांत है। जैसे अनेक तरह की चीजें मिट्टी से पैदा होती हैं, मिट्टी में ही रहती हैं और अंत में मिट्टी में ही मिल जाती हैं, ऐसे ही संसार मात्र के जितने भी बीज हैं वे सब भगवान से ही पैदा होते हैं, भगवान में ही रहते हैं और अंत में भगवान में ही लीन हो जाते हैं, गीता 10वें अध्याय का 39वां श्लोक। तात्पर्य है कि सांसारिक बीज तो उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, पर भगवान रूपी अविनाशी बीज आदि मध्य और अंत में ज्योंकात्यों रहता है। अतः वर्तमान में संसार रूप से भगवान ही है, भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। अगले वीडियो में हम अध्याय 9 के श्लोक 19 की चर्चा करेंगे, जहां श्री कृष्ण यह बताते हैं कि वे ही गर्मी बारिश रात और दिन का संतुलन बनाए रखते हैं, तो इस ज्ञान यात्रा में जुड़े रहिए। दोस्तों, गीता का ज्ञान हर व्यक्ति के लिए है और इसका प्रसार ही सच्ची सेवा है। तो क्या आपने आज का ज्ञान किसी और से साझा किया? आज ही अपने किसी प्रियजन को इस वीडियो का लिंक भेजिए और उनसे पूछिए कि उन्हें गीता से कौन सा समाधान मिला। व्हाट्सएप चैनल से जुड़े https://whatsapp.com/chanel/0029vb4wtr31nozhj0ghft01। अब हमारा पॉडकास्ट सुने। YouTube म्यूजिक पर जोड़े https://media.rss.com/apkmohetsharma/feed.xml/kukufm और Amazon Prime पर सुने ईश्वर अर्जुन संवाद श्रीमद् भगवद गीता। हर दिन नया ज्ञान, हर दिन नई सोच। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलें।
कल हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं सभी यज्ञों कर्मों और उनके फलस्वरूप प्राप्त आनंद के मूल कारण हैं। मतलब भगवान ही वो शक्ति हैं जिनकी वजह से सब कुछ चलता है। तो कल सुबह 10:30 बजे मिलते हैं, और याद रहे शॉर्ट्स का टाइम है सुबह के 9:40। हर हर गीता। हर घर गीता। आज के ज्ञान से आपको क्या सीखने को मिला? कमेंट करें, मैं भक्ति करता करती हूँ। और उसके आगे लिखिए आपका तरीका। आपके कमेंट पढ़ने का इंतजार रहेगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और दो लोगों को बताएं कि वे भी गीता के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें, लिंक। पॉडकास्ट सुने, यूट्यूब म्यूजिक। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं, तो श्रीमद् भगवद् गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि आप प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी, वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर घर गीता।